बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम।
वाकई बदनाम हो जाना, मर जाना, महबूब का नाम लेते हुए हंसते हंसते मिट जाना, ये सब एक आशिक की ही खूबियां हैं। इश्क वही है जिसमें बर्बाद हुआ जा सके।
कई आवाजों की एक आवाज, रेख्ता पॉडकास्ट।
आदाब दोस्तों, रेख्ता पॉडकास्ट के इस मोहब्बत भरे एपिसोड में मैं आपका होस्ट रितेश आपका इस्तकबाल करता हूं। मीर तकी मीर का ये शेर है, क्या कहूं तुमसे मैं कि क्या है इश्क, क्या कहूं तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। उर्दू शायरी में इश्क के बारे में ये और ऐसे कई शेर मशहूर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इश्क और आशिक की बर्बादी के किस्से सिर्फ उर्दू शायरी तक महदूद रह गए हैं। हिंदुस्तान की और जबानों और इलाकों में भी देखा जाए तो पंजाब की तरफ हीर रांझा, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा और ससी पुन्नू के किस्से हमें खूब मिलते हैं, जिनका असर बॉलीवुड में भी बहुत है। सूफी पंजाबी शायरी में तो इन किस्सों को अलग अलग सूफी संतों और शायरों ने अपने अपने तरीके से सुनाया है। सूफी शायरी से रिवायती उर्दू शायरी को अलग करने वाली कोई सीधी साफ लकीर नहीं है, बल्कि सूफी रिवायत ने उर्दू में इश्क को और नुमाया ही किया है। रिवायती उर्दू शायरी की तरफ आए तो यहाँ लैला मजनू और शिरीं फरहाद बेहद मशहूर हैं। लैला मजनू तो उर्दू शायरी में ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में इस कदर जज्ब हैं कि मजनू का नाम आशिक का पर्याय यानी कि सिनोनिम माना जाता है। ये किस्से जिस वक्त के हैं उस वक्त इश्क पर हजार पाबंदियां हुआ करती थी, लिहाजा इश्क तकलीफ देह होता था। अक्सर यही होता था कि समाज की बेड़ियों में जकड़े आशिक उन्हीं में दम तोड़ देते थे और कभी एक नहीं हो पाते थे। कभी दौलत की वजह से, कभी जात की वजह से, कभी खानदानी दुश्मनी की वजह से या किसी और कुरीति की वजह से। जाहिर है मजहब भी इससे दूर नहीं था। इसी दौरान हिंदुस्तान में भक्ति की शुरुआत हुई जो मोहब्बत का पैगाम थी। सियासी और मजहबी हर इरादे में संतों की शायरी ने कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई और इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया। मजहबों ने इश्क को रोकना चाहा तो शायरों ने इश्क को ही मजहब बना दिया। खुदा और महबूब का मकाम एक हो गया, साथ ही खुदा की बात महबूब के जरिए और इबादत की बात इश्क के जरिए होने लगी। ज़हीन शाह ताजी का ये शेर है कि ज़हीन अल्लाह को मैं देखता हूँ हुस्ने जाना में, ज़हीन अल्लाह को मैं देखता हूँ हुस्ने जाना में, नज़र खुर्शीद के जलवे महे कामिल में आते हैं। खुदा की या महबूब की आरजू करते करते मर जाना और उसी में उसको पा लेना आशिक की खासियत बन गई, यही इश्क़ हकीकी कहलाया। अपने दीदार की हसरत में तू मुझको सरापा दिल कर दे, अपने दीदार की हसरत में तू मुझको सरापा दिल कर दे, हर कतराए दिल को कैस बना हर जर्रे को महमिल कर दे। बेदम शाह वारसी कहते हैं कि अपने दीदार की हसरत में मुझे सरापा दिल कर दे, दिल के हर कतरे को कैस बना दे और हर जर्रे को महमिल कर दे। इस शेर में महमिल की जगह लैला क्यों नहीं हुआ, ये गौर करने वाली बात है। कैस की एक लौती आरजू लैला है, फिर शायर दिल के हर खतरे को कैस बनाकर हर जर्रे को महमिल करने की दुआ क्यों कर रहा है। ये दुआ इसलिए है कि शायर पहले खुद सरापा दिल होना चाहता है, यानी सिर्फ दिल से नहीं बल्कि सर से पांव तक हसरती दिल होना चाहता है, फिर उस दिल का हर कतरा कैस यानी मजनू बने और दुनिया का हर जर्रा उसके लिए महमिल हो जाए। कैस लैला के लिए सहरा में भटकता रहा, महमिल में लैला के होने का गुमान है, लैला से मिलने की हसरत है, कैस के लिए ये हसरत लैला के मिलने से बढ़कर है। खुदा मंजिल नहीं है बल्कि हसरत में तड़पना ही मंजिल है, यही आरजू, यही हसरत इकबाल के यहाँ इन लफ्जों में जाहिर हुई है। मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लूं शाने खुदावंदी। हिजाब इकसीर है आवाराए कुए मोहब्बत का, हिजाब इकसीर है आवाराए कुए मोहब्बत का, मेरी आतिश को भड़काती है तेरी देर पैवंदी। आरजू में जो दर्द और सोज वो ही आरजू में जो दर्द और सोज वही तो मेरी दौलत है। बंदगी में जो लुत्फ है उसके बदले में खुदाई भी मिले तो भी मंजूर नहीं। और तेरा हिजाब, तेरा नजर ना आना ही असल में मेरी दवा है। मेरे सीने की आग तेरे ना मिलने से भड़कती है, ये भड़कना बंद हो गई तो मुझ में और बचेगा ही क्या। इस तरह महबूब से इश्क और खुदा से ताल्लुक काफी वक्त तक साथ साथ चलते रहे और एक दूसरे को पूरा करते रहे। फिर राजशाही धीरे धीरे खत्म हुई, निजाम बदला तो इश्क भी बदला। अंग्रेजों के वक्त में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई जिसका पूरा असर दुनिया भर में हुआ। हिंदुस्तान उस वक्त अंग्रेजों का ही गुलाम था तो हम पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ा, हमारे इश्क और शायरी पर भी। अब जिगर मुरादाबादी का ये शेर देखें। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इश्क मोहब्बत फकत दो लोगों या खुदा और उसके बंदों के बीच की बात ना रहकर आपस की एक जरूरत बन गई, क्योंकि सियासत का जोर अवाम को बांटकर एक दूसरे के खिलाफ करने पर था। मोहब्बत और इश्क का पैगाम अब आजादी की तड़प से जुड़ गया था। क्रांतिकारी भगत सिंह का कहना कि मेरी दुल्हन तो आजादी है, मुल्क के नौजवानों को आजादी में ही अपना इश्क, अपनी हर हसरत दिखा गया। चकबस्त कहते हैं, जुनूने हुब्बे वतन का मजा शबाब में है, जुनूने हुब्बे वतन का मजा शबाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे ना रहे। इश्क या तो आजादी से था या महबूब के साथ आजादी के लिए लड़ने से। अब तक महबूब या खुदा चुप थे, आशिक का काम बस इश्क और इबादत में उन्हें रिझाते रिझाते बर्बाद हो जाना था। अब वही आशिक जुल्म के खिलाफ जंग में महबूब का साथ चाहता था, खुदा से सवाल करता था। अब मजाज क्या कहते हैं, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और साहिर लुधियानवी क्या कहते हैं, खुदाए बरतर तेरी जमी पर जमी की खातिर ये जंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी जमी पर जमी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतो जफर के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। खुदा और महबूब के लिए बर्बाद होने से लेकर उनसे गुफ्तगू करने तक और महबूब के ना दिखने से लेकर महबूब को क्रांति में साथ रखने तक इस सफर में दुनिया बदल गई थी, आजादी भी मिल गई थी। यही वक्त था जब पश्चिम में खुदा का इनकार ही नहीं उसके निजाम पर सवाल उठ रहे थे, रवायती इश्क की बुनियाद से यकीन उठ रहा था। ऐसा नहीं है कि उर्दू शायरी में इससे पहले खुदा का इनकार नहीं लिखा गया या इश्क को खारिज नहीं किया गया, मगर वो कभी इस कदर मायूसी और बेयकीनी के साथ नहीं किया गया। पोस्ट मॉडर्निज्म की ये एक तहजीबी खासियत थी। अब जॉन साहब कहते हैं कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, हर शख्स से बेनियाज हो जा फिर सबसे ये कह कि मैं खुदा हूं, बहुत बेआसरापन है सो चुप रहे, नहीं है ये कोई मुजदा खुदा नहीं। ये कलाम खुदा और इश्क को खारिज करके गालिब की तरह यकीन को कहीं और नहीं ले जाता कि दिल बहलाने को जन्नत की हकीकत का भरम बना रहे या खुदा को छोड़ा तो महबूब के लिए छोड़ा, बल्कि इस इश्क में ना खुदा मिलता है ना महबूब ना यकीन। तभी जॉन कहते हैं, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। बेयकीनी से होते हुए हम अब उस शायरी और उस इश्क तक आ पहुंचे हैं जहां इंसान खुदा के लिए कहता है। जवाद शेख का शेर है, कहियो कि तूने खूब बनाई है कायनात, कहियो कि तूने खूब बनाई है कायनात, लेकिन उसे लिखाई के नंबर ना दीजियो। अब दोस्तों, पहले खुदा से डरते थे, फिर उससे मोहब्बत हुई, फिर जब बे इंतहा जुल्म हुए तो उसी से शिकायत भी की गई। सरमायादारी निजाम में जब अपना वजूद खोने लगे तो उससे इनकार भी किया, मगर उसकी जरूरत भी महसूस हुई। आखिर में उसे वहां ले आए जहां हम उसकी तखलीक पर तंकीद करने लगे। खुदा से ताल्लुक अब ज्यादा बेतकल्लुफी चाहने लगा। हम खुदा तक क्यों जाएं, वो हम तक आए। तभी नईम सरमत कहते हैं, ये अनल हक भी मेरी मैं को गवारा नहीं है, ये अनल हक भी मेरी मैं को गवारा नहीं है, उसकी जानिब से सदा आए मैं सरमद हूं। इश्क में भी कमोबेश यही सूरत हाल रही। महबूब से इश्क में पहले आशिक बर्बाद हुए, महबूब की खूबसूरती एक अरसे तक मुद्दा बनी रही, उसके लब की नाजुकी से होते हुए उसके साथ होने से मोहब्बत होने लगी। साथ हुए तो ख्याल आया कि महबूब एक इंसान भी है जिसके कुछ हुकूक हैं, जो इश्क के अलावा भी एक पूरी दुनिया का हिस्सा है। साथ लड़े साथ चले तो जिंदगी की नाजुकी को तल्ख हकीकत ने कुचल दिया, सो इश्क से भी यकीन हट चला। और ऐसे में हमारे जॉन साहब फिर कहते हैं कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। फिर खुदा से ताल्लुक में जैसी तब्दीली आई थी, उसी तरह ही महबूब से इश्क में भी तब्दीली की जरूरत महसूस हुई, और महबूब के सामने आशिक अब अपनी शर्तें रखने लगा। अजहर फराक कहते हैं, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझे कबूल, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझे कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। अब दोस्तों इश्क और इबादत का सफर यहां तक पहुंचा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक बात मगर तय है, इश्क और खुदा से ताल्लुक साथ साथ चले हैं, साथ साथ बदले हैं, इनमें गहरा ताल्लुक है, और इनसे ताल्लुक इंसान की बुनियादी ज़हनी ज़रूरत है कि इनके इनकार में भी हर शख्स में इन्हें खोने का दर्द है। इश्क और इबादत और जाने कहां तक जाएं, मगर मोहब्बत और इबादत करने वालों से जवाद शेख साहब और हम यही कहेंगे, किसी और के तजर्बे से कोई फ़ायदा क्या उठाएं, किसी और के तजर्बे से कोई फ़ायदा क्या उठाएं, मोहब्बत में हर तजर्बा ही अलग तरह का तजर्बा है। हर जमाने की मोहब्बत इश्क इबादत अपने जैसा अलहदा अनोखा तजर्बा रहा है, हर तजर्बा अलग तजर्बा है। अपना तजर्बा आप कीजिए, अपना इश्क और अपना खुदा अपने जैसा हो, बस मोहब्बत जैसे चले साथ चले। आप सुन रहे थे रेख्ता स्टूडियो की पेशकश रेख्ता पॉडकास्ट। इस एपिसोड की राइटर हैं प्रेमवदा सिंह। सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें www.rekhta.org।